रज्जु में बांधने की शक्ति नहीं, तो जिनमें बाहर नहीं है, भीतर भी नहीं, भीतर भी कुछ नहीं है भगवान, क्योंकि भीतर भी जो कुछ है सब भगवान की शक्ति का परिणाम है। वो जो रस्सी है वह भी भगवान की ही शक्ति है। तो जिनमें भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, अंत नहीं है, तो कहीं रस्सी चालू करेंगे, कहीं न कहीं शुरुआत, और इसके बाद घुमा करके लाएंगे, तो उसको अंत कहेंगे, प्रारंभ है, उसको पूर्व और अपर कहते हैं। जिनमें आदि नहीं है, अंत नहीं है, जिनमें बाहर नहीं है, भीतर नहीं है, जो इस जगत के पूर्व और अपर है, यह जगत नष्ट हो जाता है फिर भी भगवान रहते हैं, इस जगत की सीमा के बाद भी भगवान रहते हैं, इसके भीतर भी भगवान रहते हैं, इस तरह से व्यापक है। तो जो व्यापक है उसको व्याप्य वस्तु नहीं बांध सकती है। उस तरह से जैसे प्रचंड अग्नि है तो उसको एक चिंगारी दाह उत्पन्न नहीं कर सकती है। प्रचंड आग लगी हुई है और उसमें दाह उत्पन्न करने के लिए कोई एक चिंगारी लेकर के उसी अग्नि की चिंगारी को डाले तो उससे तो उस अग्नि को जलाएगी नहीं वो चिंगारी। तो इस तरह से भगवान की ही एक शक्ति विशेष रस्सी भगवान को क्या बांध पाएगी, लेकिन फिर भी गोपी ने बांध दिया, यशोदा ने फिर भी बांध दिया, ये बहुत आनंद की बात है। पूर्वा परम बहिर्चांतर जगतो ये जगत चाहे, जो स्वयं जगत के रूप में है, जगत के भीतर भी है, जगत की शुरुआत हुई उससे पहले भी थे, बाद में भी रहते हैं, तम आत्मजम मत्वा बबंध, उनको आत्मज मानकर बांध दे। आत्मा का अर्थ देह, अपने देह से, अपने गर्भ से जन्मा हुआ बच्चा समझ करके बांध, पहले से ही मानती थी कृष्ण कुछ भी विभू है, अनंत है, ब्रह्म है, लेकिन माँ यशोदा के उदर में थे, तो जो उदर में रह चुका है उसको बाहर रस्सी से बांध देना कौन बड़ी बात, उसमें क्या आदि और अंत नहीं है, वो तो सब जगह आदि अंत है, शुरुआत है। आत्मजम शब्द का यह अर्थ है कि मानती थी कि पहले तो उसने रस्सी की गांठ लगाया तो पूरा नहीं हुआ, उसको बाद में सुखदेव गोस्वामी कहेंगे, लेकिन अंत में माँ यशोदा ने बांध दिया। जब रस्सी जोड़ रही थी और रस्सी फिर भी घट रही थी तो माँ यशोदा यही सोचती थी कि जो मेरे उदर में अट चुका है, जो मेरे गोद में खेला है, कैसे नहीं बन सकता है। उसको भगवान की विभूता का स्मरण नहीं आता था, उसके मुख में ही सारा विश्व देखा है, सब कुछ देखा है, इसको भूल चुकी थी। केवल आत्मजम मत्वा, माँ यशोदा की केवल यही अभिमति थी कि मेरा आत्मज है, और इस कारण से हित की भावना का उद्रेक हो रहा था, किसी तरह अपने पुत्र का हित करना है, इसको अच्छा व्यक्ति बनाना है, इस तरह से वो बांधे। भगवान अजन्मा है, अव्यक्त है, मर्त लिंगम, वास्तव में अपना नित्य श्री विग्रह मनुष्य आकार प्रकट किए हैं, ग्रहण इंद्रियों से परे, पर ऐसे प्रभु को गोपिका ने उलूखल में बांध दिया। कैसे, जैसे प्राकृतम जता, जैसे किसी साधारण बच्चे को बांध दिया जाए, वैसे बांध दिया भगवान को। प्राकृतम जता, सुखदेव को साम उदाहरण देता है, ऐसे रोज बच्चे बांधे जाते हैं कहीं पर। एक बार मैं एक जगह पर कथा कह रहा था तो कुछ बच्चे हल्ला कर रहे थे, खेल रहे थे, इधर एक घर में प्रोग्राम था बाहर में, तो बाहर विदेश की बात है, 2 साल पहले की, तो बच्चे उस घर के थे और संबंधियों के आ गए थे, ये तो हिंदी समझते नहीं थे, सब इधर उधर हल्ला कर रहे थे, तो उनको किसी ने ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दिया सब, जहां से आवाज न आवे, लेकिन वहां सब मिलकर इतना जोर से रोना चालू किए कि कथा बंद करनी पड़ी, ये क्या हो गया, और सबको ये शंका हो गई कि अरे कहीं पुलिस न आ जाए, बच्चे रोने लगे, क्या हो गया, इतना जोर जोर से रोने लगे। उन बच्चों को विश्वास हो गया कि अब हम लोगों को बंद रह करके ही ये छोड़ देंगे, अब नहीं खोलेंगे। तो अंत में उन लोगों को निकाला गया और इसके बाद जैसे तैसे कथा पूरी की गई, 1 घंटे की कथा थी। तो ये प्राकृत शिशु है जिनको बंद कर दिया गया एक रूम में, ये बांध दिया जाता है, वैसे भगवान को बांध दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जिन बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, तेहिया विच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी बांधो सकत न छोरी। जो प्रभु कर्म की रस्सी से सुर असुर नाग सबको बंधन में डाले हुए हैं, सब अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं, उसी पर ब्रह्म को, भगवान को, परमेश्वर को ऐसे बंधन में बांध दिया गया कि सकत न छोरी, अपने से खोल नहीं सकते थे। न बुद्धि थी खोलने की, न साहस था खोलने का, खोल लेते तो फिर छड़ी बैठती ऐसा है। खोल नहीं सकते थे और कोई नहीं खोला इनको, यहाँ तक श्री बलराम जी भी नहीं खोले और कोई सखा नहीं खोला, क्योंकि सब आकर पूछते थे कौन बांधा है, तो जसोदा ने बांधा। जसोदा ने बांधा है तो कौन खोले, किसी का साहस नहीं हो रहा था। अंत में नंद महाराज आए, वो भी बहुत घटना के बाद आएंगे, अभी वृक्ष गिरेंगे, आवाज होगी, आएंगे तब देख करके खोले, वो नहीं पूछे किसने बांधा है क्या। हरि सूरी जी कहते हैं कि भगवान ये दिखाते हैं कि हम में स्वतः कोई बंधन है न मुक्ति है, मैं तो नित्य मुक्त हूँ, बांधने वाले कोई और हैं, खोलने वाले कोई और है, हम में कोई बंधन नहीं है। तो भगवान वास्तव में प्रेम की डोरी से बांधे गए और भगवान ने बहुत प्रयास किया कि हम पर बंधन न लगे। पहला तो प्रयास वे किए कि मैं पकड़ में न आऊं, पर पकड़ लिए गए। दूसरा प्रयास किए कि मुझ पर बंधन न लगे, लेकिन बंधन भी लग गए। इस तरह भगवान अपने भक्त के प्रेमाग्रह से हार जाते हैं, भगवान पराजित होते हैं, यह उनका स्वभाव है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है आगे कि भगवान अपनी भक्त परवशता को दिखाते हैं इस लीला द्वारा। तो गोपी ने बांध दिया, बांधते समय क्या घटना हुई इसको सुखदेव गोस्वामी फिर से कह रहे हैं। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो न भभुते न संदधिन्यच्च गोपिका। बारंबार गोपिका शब्द कह रहे हैं, बहुत सुंदर शब्द है, क अर्थ कोमलता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, क शब्द का प्रयोग, जैसे बालक बाल भी कह सकते हैं पर बालक कहते हैं, ऐसे गोपी गोपिका। माता जसोदा के अतिशय स्नेह मैं हृदय को व्यक्त करने के लिए गोपिका शब्द प्रयोग किया जा रहा है। बेचारी सोचती थी हमारा एक ही पुत्र है और जो इस तरह से दही दूध आदि नहीं संभाल करके रखेगा तो फिर इसका फाइनेंस क्या रहेगा, इसके पास धन क्या रहेगा, ये दुख भोगेगा, ये बारम्बार ये चिंता हो रही थी। इस तरह से माखन फेंक रहा है, मटका फोड़ रहा है, दही बिखेर रहा है, कर रहा है, जो घर में पूंजी है, जो धन है, जो इसके निर्वाह का कारण है, उसी को ये बर्बाद कर रहा है। इसीलिए गोपिका गोपिका शब्द दिया जा रहा है बार बार। तो जब बांध रही थी बद्धमानस्य, कृष्ण को जब बांधा जा रहा था, प्रथम बार जब रस्सी माँ जसोदा ने लगाया तो द्वि अंगुल उन्नम न्यूनम, दो अंगुल कम हो गया। माता को आश्चर्य हुआ, देखने में रस्सी लंबी थी लेकिन कमर में लपेटने पर दो अंगुल कम हो गए। तो फिर भी वो ऐसा नहीं हुआ कि तब चकित होकर के और कुछ सोचने लगे कि क्या बंधन नहीं लगेगा, क्या होगा, नहीं, अन्यत संदध है, वो दूसरी रस्सी संधान की, दूसरी रस्सी जोड़ी संदध है, संदध मैंने संधि किया, गांठ लगाया, दूसरी रस्सी लेकर के जोड़ी और फिर बांधने लगी। जदासी तदपि न्यूनम, जब दूसरी रस्सी लगाई अनुमान करके कि इतने में कमर बंध जाएगी, तो ज्यादा लंबी रस्सी नहीं जोड़ा होगा, जब दो अंगुल कम हो रही थी तो एक बीता लगाया होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। लेकिन जद आसी तदपि न्यूनम, फिर भी वो रस्सी कम पड़ गई। तेन इस कारण से अन्य दपि संदद है, तो फिर तीसरी रस्सी लगाई, तदपि द्वेंगुलम न्यूनम, फिर भी वो रस्सी दो अंगुल कम पड़ गई। जब जदा दत्त बंधनम, तो जसोदा भी पड़ गई, तब वो लंबी लंबी रस्सी जोड़ने लगी लंबी लंबी रस्सी लेकर के जोड़ने लगी आसपास में। पहले तो जो रस्सी हाथ से पकड़ सकती थी उसको ली, इसके बाद वहाँ खड़ी गोपियों को, जो सब लोग तमाशा देख रहे थे, गांव में कृष्ण जो भागे थे तो इसके बाद सब लोग कृष्ण के साथ आए थे कि देखे माँ क्या करती है। तो गोपियाँ वहाँ जुट गई थी, बच्चे भी जुट गए थे। तो जो दासियाँ थी उनको आज्ञा करती थी, रस्सी लाओ, क्या खड़े खड़े देख रही है। वो तो आश्चर्य में पड़ गई गोपियाँ कि ये क्या हो गया, रानी को पागल हो गई है क्या। और जब बंधन नहीं लग रहा है तो छोड़ देना चाहिए, हो गया। ये सब बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, तमाशा लग गया कि माँ बांध रही है अपने पुत्र को और पुत्र बंध नहीं रहा है। न रस्सी देखने में छोटी लगती थी, न कमर मोटी हो रही थी, और फिर भी रस्सी का घटना चालू होता है। देखने में लंबी लग रही थी, लेकिन जब ही गांठ लगाने चलती थी तो दो अंगुल कम हो जाती थी। सब लोग तमाशा देखने लगे। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि, स्वगेह दामानी, अपने घर के दामों को, रस्सियों को मंगा मंगा कर जोड़ने लगे। स्वगेह दामानी, पहले अपने घर के रस्सियों को जोड़ी, जब नहीं अपने घर की रस्सियों से बंधन लगा तब दूसरे के घर से मंगाना चालू की। रस्सिया मिलत नहीं के गोकुल नगरिया में। एक गायक ने गाया कि रस्सी मिल नहीं रही थी, इतना मंगा रही थी, इतना मंगा रही थी, लोग ला कर दे रहे थे, खास करके गोपियों को आज्ञा करती थी लाओ लाओ लाओ। तो स्वगेह दामानी जोड़ी और गोपी नाम सुस्मयंती नाम, गोपियां आया करके मुस्कुरा रही थी, सुस्मयंती नाम खूब मुस्कुरा रही थी। उनको अच्छा लग रहा था कि लाला बंधन में नहीं आ रहा है, एक तो उनको खुशी हो रही थी। माँ चाहती थी कि बांध करके इसको शिक्षा दूं, लेकिन जब बंधन नहीं लग रहा था तो अन्य गोपिकाओं को बहुत प्रसन्नता हो रही थी और आश्चर्य में वो पड़ी थी, हंस रही थी कि रस्सी जोड़ी जा रही है फिर भी घट रही है और माँ का दुराग्रह नहीं रुक रहा है, फिर भी ये बांधना चाहती है। बच्चा ऐसे रो रहा है, फफक रहा है, सब इसको दया नहीं आ रही है। वही माँ जो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है और आज इसको बांधना चाहती है। तो वे लोग मुस्कुरा रहे थे, एक प्रकार से माँ की विफलता का वे उपहास कर रही थी, पर फिर भी माँ दुराग्रह में पड़ी हुई थी। कोई कुछ कार्य कर रहा है, कार्य सफल नहीं हो रहा है तो दूसरे लोग हंस देते हैं तो बेचारा लज्जित हो जाता है कि अरे, लेकिन वे लोग मुस्कुरा रही थी, एक प्रकार से उस जसोदा की विफलता को वे व्यक्त कर रहे थे कि आप क्या बिना मतलब के बांध रही है, मुस्कुरा रहे थे। होता है कोई व्यक्ति चिंता में होता है, कोई काम कर रहा है उस समय कोई व्यक्ति हंसे तो कहेगा क्या हंस रहे हो, ऐसा वो कहता है, दुख लग जाता है मन में। लेकिन वे सब सुस्मयंती नाम, सु का अर्थ यहाँ स्पष्ट, स्पष्ट हंस रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि रानी को क्या हो गया और ये क्या जादू हो गया, बच्चा के कमर में बंधन नहीं लग रहा है। तो जसोदा संदधत्य, गोपी नाम सुस्मयंती नाम, स्मयंती विस्मिता भवत, और माँ जसोदा भी हंस रही थी, स्मयंती, वे लोग तो हंस रही थी और माँ जसोदा भी कोई बहुत परेशान नहीं थी वास्तव में, वो भी हंस रही थी कि क्या हो रहा है, और फिर भी विस्मिता और विस्मित हो रही थी, विस्मित हो रही थी, क्या बात है कि रस्सी कम हो रही है, बच्चे का यह प्रभाव है, इसकी अलौकिक शक्ति है, इसको नहीं समझ रही थी। देखिए भगवान की शक्ति है, रस्सी उतनी ही लंबी है, बहुत बहुत लंबी रस्सियां हैं, जोड़ी जा रही है, गांठ बनाई जा रही है, लेकिन नहीं पूरी हो रही है। तो इसमें काफी समय लगा, बार बार रस्सी मंगाना, रस्सी के गांठ को जोड़ना ठीक से, और फिर कमर में बांधना, तो फिर घट जाना, तो फिर मंगा करके जोड़ना, वो जोड़ने से थोड़े पूरा होने वाला था। लेकिन माँ जसोदा को भी बांधने का एक आवेश हो गया कि बांध करके ही रहूंगी। कोई कोई गोपी कह देती थी कि जब आपके पुत्र के भाग्य में बंधन नहीं लिखा गया है तो क्यों निर्बंध कर रही, आप क्यों हट कर रही, छोड़ दीजिए, नहीं बांधूंगी बांधूंगी। और इस कारण से माता जसोदा के शरीर में पसीना आ गया, लथपथ हो गई पसीना से। एक तो गांव में वो दौड़ी थी कृष्ण के पीछे पीछे, और अब रस्सी में गांठ लगाना, बांधना, और बहुत कठिन हो रहा था, इसलिए स्वमातु स्विन गात्राय, स्विन गात्रा, स्विन का अर्थ पसीना से तर बतर गात्र हो गया शरीर, पसीना से लथपथ हो गया। पहले तो दही मथी थी, इसके बाद दौड़ी थी, इसके बाद अब रस्सी में गांठ लगा रही है बार बार, तो इस कारण से पसीना हो गया। कृष्ण बंद नहीं रहे थे पहले। एक भागवत के टीकाकार आचार्य कहते हैं कि जब माँ यशोदा कृष्ण को बांधने चली तो भगवान की स्वरूप भूत जो शक्तियां हैं नित्य, वे सब तैयार हो गए, कहने लगे हम भगवान में बंधन नहीं लगने देंगे। जैसे उनकी सर्व व्यापकता शक्ति है, विभुता शक्ति है, सर्वज्ञता शक्ति है, और भी बहुत सी शक्तियां, स्वरूप भूत शक्ति, जैसे सूर्य की शक्ति है दाहकता, प्रकाश सहज से, आग की शक्ति है दाह, तो कोई आग के नजदीक जाएगा तो जलेगा, कोई वस्तु जलेगी। तो भगवान अनंत है, असीम है, अपरिछिन्न है, उनको कोई कैसे बांध सकता है? तो उनकी शक्तियां प्रकट हो रही थी, हम नहीं बांधने देंगे, हम परब्रह्म को नहीं बांधने देंगे। तो इस तरह से शक्तियों में होड़ हो रही थी, तो नहीं बांधने दे रही थी। तब तक भगवान ने देखा उनकी माँ स्वमातु, स्वमातु मेरी माँ स्वीन गात्राया। पहले तो रो रहे थे, ध्यान नहीं दिए कि माँ की क्या दशा है, लेकिन भगवान ने देखा कि माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, विश्वस्त कबरस रज, और कबर केस बंध खुल गया था पूरा, बाल बिखर गए थे दौड़ने में और इधर बांधने में। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सित स्वबंधन, स्वमातु परिश्रमम दृष्टवा, अपने माँ का परिश्रम देख कर कृपया सित स्वबंधन, कृपा करके अपने बंधन में आ जाए। इसका अर्थ ये जब देखे तो गांठ लग गई, और गांठ लग गई कृष्ण के कमर में, कटी में, तो माँ निश्चिंत हो गई। फिर वो घर का काम करने चली गई, अरे ऐसे ही पड़े रहो। तो उसने सोचा कि कुछ देर तक ऐसे रहेगा, इसको काम पूरा कर लूंगी, अभी माखन निकालना है, अब दूसरा दही महेगी, माखन निकालना था और काम करना था, ये करना था, तब तक ऐसे रहे, इसके बाद तो मना लूंगी, उसको फिर गोद में लूंगी, दूध पिलाऊंगी, खिलाऊंगी, तब तक छोड़ दिया ऐसे। कृष्ण कृपया सिद्ध स्वबंधन है, वो अपने बंधन में आए। स्वबंधन का अर्थ अपने स्वजन के बंधन में, अपने माँ के बंधन में, ये अर्थ। तो श्री कृष्ण तो माँ के बंधन में है ही, या अपने स्वजनों के प्रीति के बंधन में। दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी, इसके विषय में बहुत से आचार्यों ने बहुत प्रकार की बातें कही है, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि दो चीज की कमी हो रही थी। अभी माँ का परिश्रम पूरा नहीं हुआ था, इस कारण से भगवान की कृपा पूरी नहीं हो रही थी, बस यही दो अंगुल कम पड़ रही थी। भगवान ने माँ का परिश्रम देखा तब इधर से कृपा पूर्ण हो गई, इधर की एक अंगुली रस्सी जो कम पड़ रही थी परिश्रम की, ये जब पूरी हुई तो उधर से कृपा पूरी हो गई, भगवान बंधन में आ गए, स्वीकार किया, कमर में रस्सी बांधी गई थी। यह श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कहाँ रस्सी बांधी थी, लेकिन अन्य ग्रंथों से सिद्ध है कि उदर में दाम बांधा गया था, इसलिए दामोदर कहा। दाम मतलब रस्सी, रज्जू, और उदर से कमर, पेट, इसमें बांधा गया। इस प्रकार भगवान अपने माँ के, अपने भक्त के बंधन को स्वीकार किए। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी इस पर अपना कमेंट देते हैं, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्वबसे नापि कृष्णे न जस्य दम से स्वरम बसे। जिस कृष्ण के वश में यह सारा विश्व है, विश्व ही नहीं, विश्व के जो शासक हैं ब्रह्मा शिव आदि देवता, वे सब कृष्ण के वश में हैं, परंतु वे प्रभु भी अपने भृत्य के वश में रहते हैं, भगवान ने इन सब लीलाओं के द्वारा दिखाया। भागना या और भी बहुत सी ब्रज में जो लीलाएं हुई थी, इन सब के द्वारा और माँ यशोदा के पकड़ में आ जाना, बंधन स्वीकार करना, इन सब के द्वारा समदर्शिता, भगवान ने सम्यक दिखाया। क्या दिखाया? भृत्यवश्यता। हरि ने अपनी भृत्यवश्यता दिखाया। भगवान किस प्रकार भक्तों के प्रेम के अधीन है, भक्तों को सुख देते हैं, उनका दिया हुआ भोजन करते हैं और उनसे विविध प्रेम का व्यवहार करते हैं, सब मिलाकर उनके स्नेह के वश में रहते हैं, इसको भगवान ने दिखाया। किसको दिखाया? यहाँ यह कर्मवाचक शब्द नहीं है। किसको दिखाया? देखने वाले को दिखाया और किसको दिखाया? जो देखना चाहते हैं रियली, जो भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान वास्तव में क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वे भक्तों से कैसा व्यवहार करते हैं, जीव के साथ उनका क्या संबंध है, और हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान हमारे प्रति क्या व्यवहार करेंगे, इन सारी बातों को जो लोग जानना चाहते हैं, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भगवान ने यह ज्ञान दिया दिखाकर। समदर्शिता, सम्यक दर्शिता। भगवान अपने सबसे बड़े प्रचारक, यह लीला करके अपना स्वभाव, अपना भक्त प्रेम वे दिखा रहे। दर्शिता, श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के अभिप्राय को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, एवं इस प्रकार माता यशोदा की अधीनता स्वीकार करके, प्रेम की लीला करके भगवान अपनी भृत्यवश्यता को, दर्शिता दिखाए। कौन और प्रभु का विशेषण दे रहे हैं, स्व बसे नापी कृष्ण ना जस्यदम से स्वरम बसे, जो स्वतंत्र हैं और जिनके वश में सारे देवता हैं, ईश्वरों के सहित सारे जीव जिनके वश में हैं, वे प्रभु भृत्य के वश में हैं, भक्त के वश में हैं, या उन्होंने दिखाया। जब भगवान के इस स्वभाव को कोई जीव जानता है, तब वह भगवान से प्रेम करना चालू करता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान कभी बोलते भी नहीं होंगे, हंसते नहीं होंगे, जब रूप ही नहीं है तो बोलेंगे क्या, है ना? रूप नहीं है, न हंसते हैं, न बोलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, तो ऐसा भगवान को सुन लेगा कोई तो ऐसे भगवान से वो क्या प्रेम करेगा? इसीलिए भगवान अपने तात्विक स्वरूप को दिखा रहे हैं कि देखो देखो मैं किस तरह से भक्त के वश में हूँ। मत्वा आत्मजम, जो व्यक्ति अपना पुत्र मान रहा है, तो मैं उसका पुत्र हूँ, उसके वश में हूँ। जो माँ यशोदा इतना चिंतित है कृष्ण के लिए कि मेरा बेटा सुशील होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समझदार, बुद्धिमान, और यह जान करके वो कृष्ण को मारने की धमकी देने में भी नहीं हिचक रही है, बांधने में नहीं हिचक रही है, क्यों? वो कृष्ण का हित करने के लिए, हित करने के लिए बांध रही है, तो भगवान उस बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। क्या भगवान का भी कोई हित कर सकता है? क्या भगवान को ये बुद्धि नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए, किस चीज की रक्षा करनी चाहिए, क्या तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए? पर भगवान वास्तव में दिखा रहे। और श्रील सुखदेव गोस्वामी संकेत कर रहे हैं भागवत पढ़ने और सुनने वालों को, इस तरह से देखिए भगवान की भृत्यवश्यता को। हम लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह में बैठे हैं तो इन लीलाओं में हमें देखना चाहिए, इन सब बातों पर विचार करना चाहिए कि भगवान का ऐसा प्रेमी स्वभाव है कि अपने भक्त की वश्यता को स्वीकार करते हैं, अवश्य ऐसे प्रभु से प्रेम करना चाहिए। वह व्यक्ति जो बहुत बड़ा हो लेकिन अपने को छोटा बना करके सुलभ करे तो वह सबका प्रिय होता है, और जो व्यक्ति बड़ा है और बड़प्पन को ही केवल दिखाता रहता है तो उससे प्रेम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बड़ा आदमी झुक जाता है, नम्र होता है, तो उसे बहुत लोग प्रेम करते हैं। भगवान वास्तव में सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वे आकाश की तरह हैं, महान छिद्रवत, जैसे आकाश सबसे बड़ा है वैसे सभी गुणों में भगवान बड़े हैं, सब तरह से अनंत हैं, पर फिर भी वे सबसे सुलभ हैं आकाश की तरह ही। आकाश बड़ा है लेकिन हमारे लिए सबसे सुलभ वस्तु है, जहाँ है वहाँ आकाश है। इसी तरह भगवान इन सब लीलाओं के द्वारा भगवान चाहते हैं जगत के जीवों का हृदय आकर्षित करने के लिए मुझसे प्रेम करें, मेरे स्वभाव को जान जाए। तो जो श्रीमद् भागवतम कहते हैं उनका एक कर्तव्य होता है कि इस तरह से भगवान के स्वभाव को, गुण को वे व्यक्त करें जनता में, जिससे लोग समझें कृष्ण को वास्तव में। यही है उपदेश। चैतन्य चरितामृत में एक शब्द आया है, श्लोक आया है, भ्रमिते भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्र पिशाची फलाए। माया को पिशाची कहा गया, तो जीव माया के वश में है और यदि भ्रमिते भ्रमिते भ्रमण करते करते साधु वैद्य पाए, यदि साधु मिले तो वही वैद्य का काम करता है, जैसे वैद्य कोई रोग दूर करता है तो उस तरह से वो साधु वैद्य कुछ मंत्र बोलता है। तार उपदेश मंत्र पिशाची पला, इसको उपदेश मंत्र से पिशाची दूर हो जाती है, माया दूर हो जाती है। तो उपदेश मंत्र है वास्तव में, यह श्रीमद् भागवतम है, इसके एक एक श्लोक मंत्र है वास्तव में। उपदेश मंत्र का अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि एक दो मंत्र बोल दिया गया बस आवेश माया का दूर हो जाएगा, नहीं। जो शास्त्र के शब्द हैं भगवान की लीलाओं से भरपूर, यही है उपदेश मंत्र। और ये व्यक्ति सुनता है तो माया का आवेश कम हो जाता है, माया छोड़ देती है, जीव भगवान को समर्पित हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने दिखाया इस लीला के द्वारा अपनी भृत्यवश्यता को। भगवान के गुणों को जब तक बताया नहीं जाएगा संसार में, तब तक कैसे लोग भगवान से प्रेम करेंगे। और माया पिशाची भाग जाती है, इसका अर्थ है कि सांसारिक वस्तुओं का आग्रह, भोगने की भावना, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं इसका अधिकारी हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, इस प्रकार की जो भावना है यही है वास्तव में माया। पर जब श्री कृष्ण के गुणों में मन लुप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति संसार का आग्रह बिल्कुल छोड़ देता है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध के अंतिम श्लोक में लिखा गया है कि श्री कृष्ण कथा सुन सुन करके राजा लोग, सम्राट लोग इस जगत को छोड़ देते थे। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते हैं लास्ट, भगवान ने ऐसी कथा सरिता बहाई इस जगत में, अपने इस अवतार में, कि इस सरिता में स्नान करने वाले राजा महाराजा जिनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, वे लोग राज्य छोड़ छोड़कर वन में चले गए। भगवान में इतना अनुराग हुआ। तो जब हम श्रीमद् भागवतम रियली यदि सुनने की चेष्टा करते हैं तो माया का प्रभाव स्वतः निरस्त हो जाता है, परंतु श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा का उदय होना बहुत विरल है। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है सुश्रुभि कृति भी, जो कृति होते हैं जिन्होंने बहुत बहुत जन्मों में बहुत बहुत सुकृत किया है, उनके हृदय में श्रीमद् भागवतम सुनने की लालसा उदित होती है। और जैं ही लालसा उदित होती है उसी समय भगवान कृष्ण उनके हृदय में बंदी हो जाते हैं। तत्क्षणात और शब्द शब्द का प्रयोग किया गया, धर्म पुरोहित कैतवेत कैतवोत्र और कैसे है परम धर्म पुरोहित कैतवोत्र परम निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर सद्य हृदय वृद्ध तेत्र कृते भी शुश्रूष भी तत्क्षणात। तत्क्षणात और सद्य, जो व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा करता है उसी समय ईश्वर श्री कृष्ण उसके हृदय में बंदी हो जाता है, अवरुद्धते वे जा ही नहीं सकते हैं हृदय छोड़कर। श्रीमद् भागवत सुनने की अभिलाषा इतना विरल, इतना दुर्लभ वस्तु, तो सुन लेने पर क्या होगा। जो सुनने की इच्छा होने पर हृदय में ईश्वर बंदी हो जाता है, तो पूरा सुन लिया जाए तो क्या हो, तो कभी नहीं जाएंगे हृदय से। कहने का मतलब यह, तो श्रीमद् भागवतम की यह महिमा है। श्रीमद् भागवतम के वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार हरि ने अपनी भृत्वत्सता दिखाई, श्री कृष्ण की यह लीला किसी के भी चित्त को आकृष्ट कर सकती है। हमने भी देखा है बहुत से महात्माओं को भारतवर्ष में, अब उसमें से कुछ लोग तो नहीं हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम कहते कहते जब इस प्रसंग में पहुंचते थे वे लोग, तो कई दिन लगातार दाम बंधन की लीला कहते। इसी वृंदावन में मैं सुना कई कई दिन तक केवल उखल बंधन की लीला कह रहे हैं, उखल बंधन की लीला कह रहे प्राय। मैं कई लोगों के मुख से सुना, जनरल प्रवचन होता था तो 15-15 दिन इसी पर हो रहे हैं, प्रतिदिन एक घंटा 15 दिन इसी पर चल रहा है। भगवान ने दिखाया था हरि शब्द का प्रयोग यहाँ किया जाता है, बहुत आकर्षक लीला है। जब गीता में भगवान जो अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं एक ग्रामीण अध्याय में, वह उतना चित्त को नहीं खींच सकता है जितना यह भगवान का बस में होना। वहां तो भगवान अपना रूप दिखाए तो अर्जुन जैसा योद्धा थर थर कांपने लगा, और यहाँ पर भगवान कांप रहे और रो रहे लाचार। इन लीलाओं का अत्यधिक महत्व है वास्तव में, सिद्धांत समझाते हुए यदि इनको कहा जाए तो लोग अधिक आकृष्ट होंगे भगवान कृष्ण के प्रति। इस प्रकार भगवान ने दिखाया। अब यह कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मानो महाराज परीक्षित ने पूछा, क्या इसको ये पहले नहीं दिखाए थे, क्या जसोदा जैसा सौभाग्य, जसोदा जैसा प्रबल प्रेम किसी और में नहीं है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, अपने आप चालू करते हैं। नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संशयः, प्रसादम ले भिरे गोपी जत्त प्राप विमुक्तिदात। विमुक्तिदात, विमुक्ति का अर्थ प्रेम। प्रेम देने वाले श्री कृष्ण से जो प्रसाद प्राप्त किया गोपिका ने, जसोदा ने, वह विरिंच नहीं प्राप्त किए। इमम विरिंचम न ले भिरे, न ले भे एक वचन में ऐसे होगा, लेकिन बहुवचन में ले भी रे कह रहे। इस प्रसाद को, भगवान की ऐसी प्रसन्नता कि वे अपने को इस तरह से गोद में दे दें और माँ का बंधन स्वीकार करें, स्तन पिए, भगवान माँ से रूठ जाए, माँ मनाए इनको खाने के लिए, गोद में ले और कहे कि तुमको यह दे दूंगी, तुम खा लो खा लो। माँ जसोदा माखन दे करके कृष्ण के मुख में और ताजा ताजा रोटी का छोटा सा टुकड़ा, और कहती थी दारी के, खाओ नहीं तो मारूंगी तमाचा, तो डर कर खा जाती। तो भगवान लीला करते थे, कभी कभी उगल देते थे, खाते नहीं थे। बच्चे ऐसा करते हैं, कभी कभी खिलाने पर वो नहीं खाते। और माँ खास करके दूध का कटोरा मुख में लगा करके कहती थी पियो नहीं तो मारूंगी, तब पीते थे दूध। और कभी कभी कहती थी तुम जब दूध पियोगे तो बलराम की जितनी जितनी चोटी है, मतलब उसका जो केस लंबा लंबा है, तो तुम्हारा भी बढ़ जाएगा। कृष्ण कहते थे अच्छा, दूध पीने से केस बढ़ जाएगा, चोटी बढ़ जाएगी? तो माँ कहती थी हाँ। तो कृष्ण ऐसे पीते थे और छू कर देखते थे, अरे नहीं जितनी लंबी है उतनी ही रह गई, कहाँ बढ़ रहे हैं। ऐसे कहते थे, बढ़ नहीं रहे। तो वास्तव में गोपी ने, जसोदा ने जो प्रसाद भगवान का प्राप्त किया, वह ब्रह्मा जी नहीं प्राप्त कर सके, जबकि ब्रह्मा जी समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं, समस्त आचार्यों के मुकुटमणि, भगवान के डायरेक्ट पुत्र और डायरेक्ट शिष्य भी हैं। बहुत स्नेह से भगवान ने हृदय में सारा ज्ञान इनको दे दिया, सामने हाथ भी मिलाया, शिक्षा दिया, सृष्टि में नियुक्त किया। बहुत कृपा है, भगवान के हस्त कमल का स्पर्श इनको प्राप्त है, भगवान के नाभि कमल से जन्म भी लिए। सबके गुरु हैं, सबके आचार्य हैं, और जो नारद जी के पिता हैं, सनकादिक के पिता हैं, उनके लिए कहना ही क्या। लेकिन फिर भी माँ यशोदा को जो सुख दिया कृष्ण ने, जो अपने आप को दिया, वो ब्रह्मा जी को नहीं दिया। न इमं विरिंच लेव, ब्रह्मा जी ये सुख प्राप्त नहीं किए। न भव, और समस्त वैष्णवों में जिनका दृष्टांत दिया जाता है, समस्त वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान के प्रेमियों में, पर भव भगवान शिव भी यह सुख नहीं पा सके जो यशोदा को मिला। और यहाँ तक कि श्री अपि अंग संत्रया, जो भगवान के एक अंग विशेष में रहती हैं, वक्षस्थल में रहती हैं, निरंतर अंग में रहती हैं, वे श्री भी इस सुख को नहीं पाई जो यशोदा ने पाया। न लेभरे न लेभरे, तीनों में न न लगाया गया है, न न न। एक बार न लगा करके तीनों का नाम दे दिया गया होता तब भी काम चल सकता था, लेकिन तीन बार न कहने का आशय यह है, न लेभरे न लेभरे न लेभरे, नहीं ही पाए, नहीं ही पाए, नहीं ही पाए। जो प्रसाद गोपी ने पाया, जो सुख गोपी ने पाया, जो यशोदा ने पाया, ये लोग नहीं पा सके, नहीं पा सके, नहीं पा सके। तो यही है भगवान की सबसे बड़ी कृपा, कि जब वे जीव को पुत्र के रूप में मिल जाए, या सखा के रूप में, या प्रियतम के रूप में, और मन भर करके, इच्छा भर करके उनकी सेवा की जाए, उनको खिलाना पिलाना, गीत गाना सुलाना, या झूला झुलाना, किसी तरह से सेवा करने का व्यक्तिगत जब सौभाग्य प्राप्त हो, श्री कृष्ण हमारे कोई स्वजन में से एक हो जाए, तो यही है कृष्ण का सबसे बड़ा प्रसाद। तो इस तरह से भगवान ने अपने को तो सबको दिया है, भक्तों को अपने आप को दे देते हैं, उनको आत्मद कहते हैं, आत्मानं ददाति इति आत्मद, जो अपने आप को दे देते हैं। तो अपने आप को देते हैं तो किस रूप में देते हैं, जो सारथी बनाकर अर्जुन को दे दिए, या और भी भक्तों को देते हैं, माँ यशोदा को पुत्र के रूप में अपने को दिए, राधा रानी को प्राणनाथ प्रियतम के रूप में अपने को दिए, सखाओं को सखा के रूप में दिए, भक्तों को भगवान इष्ट देव के रूप में अपने आप को दिए, उनके बस में, जैसे बलि महाराज भगवान द्वारपाल के रूप में अपने को दिए। यद्यपि बलि महाराज सेवा करते हैं, इष्ट मानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने आप को दे दिए। परंतु यह आत्मदान देखा जाए तो भगवान ने जैसा अपने को यशोदा को दिया है, वैसा किसी को नहीं दिया। यह प्रसंग आ गया है एवं शब्द से, सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही संकेत किया, इस प्रकार भगवान दिखाए, भागे फिर भी पकड़ लिए गए, रो रहे थे बांध दिए गए, इसके द्वारा भगवान ने सिखाया। वास्तव में माता यशोदा को जो सौभाग्य मिला है वो किसी को नहीं मिला। जो माँ जो भगवान को उदर में रखी, उदर के बाद गोद में रखी, अपने दूध पिला रही है, रात में कई बार उठ उठ करके कृष्ण दूध पीते हैं, और बिल्ली की बोली भी सुनते ही माँ के गोद में चिपक जाते हैं, और बिल्ली आ रही, माँ कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चली गई वो बिल्ली, चली गई। भगवान को सुख देने के लिए उनके भक्त ही बिल्ली बन करके वो आवाज करते, शास्त्र का सिद्धांत। और छोटे हैं तो माँ कहती है कि बेटा दूर खेलने मत जाना, उधर हाऊ आए हैं। उधर क्या की थी माँ यशोदा, एक कारीगर के द्वारा बाघ जैसा जीव बना करके रख दी थी, तीन चार बड़े बड़े दांत, विकराल आंखें, बड़े बड़े जबड़े। तो इसलिए कृष्ण दूर न जाए, जंगल चारों तरफ था, बंद था, वास्तव में 84 को केवल बन ही बंद, कहीं दूर न चला जाए बच्चा, कोई जीव न खा जाए, सांप न डस दे, या कोई गाय न मार दे, बैल न मार दे सिंह वाले। तो बहुत ही सतर्क रहती थी, दूर मत जाओ, दूर मत जाओ। एक दिन की बात थी, वो लगी कहने दूर मत जाओ खेलने, हाउ आए। तो कृष्ण पूछने लगे, मैं हाउ क्या चीज होता है। क्या चीज हाउ होता है? माँ कही कि ऐसा भयानक होता है, बच्चे को पकड़ कर खा जाता है, अरे तब तो कभी नहीं जाऊंगा, और भाग कर फिर गोद में आ जाते हैं, ऐसा हाल। लेकिन फिर कहते हैं कि माँ एक बार मैं नृसिंह रूप धारण किया था, उस समय हाउ नहीं देखा। माँ कुछ नहीं विचार कर रही कि यही नृसिंह बना था, वो ऐसे सोचते है कुछ बक रहा है, क्या कर रहा है, गोद में लिए लिए, रात की बात है। माँ हाउ नहीं देखा उस समय, मैं रघुनाथ के रूप में, राम के रूप में समुद्र बांध दिया, रावण का वध किया, ये किया वो किया। तो माँ कहते हाँ हाँ सब वध कर लिया, चुपचाप रहो सो, जो जो कर लिया, रावण का वध किया, समुद्र पार कर लिया, चौकट पार नहीं कर सकता है, समुद्र पर पुल बांध। इस तरह से कहते, फिर कहते मैंने पूरी दुनिया को दो पग में नाप लिया, बलि से दान लिया, तो हाउ वहाँ भी नहीं देखा। अपने सभी अवतारों को कह कहकर कहने लगे कि मैं वहाँ भी हाउ नहीं देखा, हाउ क्या चीज होता है। एक बार और जब ही फिर बिल्ली बोलती है तभी डर करके गोद में चिपक जाते हैं, सारा अवतार समाप्त हो गया। तो इस तरह भगवान है, माँ यशोदा से बातें करते हैं, खिलाती हैं तो खाते हैं, और बांधती है तो बंध जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपने भक्त के प्रेम के अधीन है। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी जो बात कह रहे हैं कि नेमम विरिंचो न भव न श्री रप्यंग संश्रया, बिल्कुल सही बात। प्रसादम ले भिरे गोपी जतक प्राप्त विमुक्ति दात, श्री कृष्ण मुक्ति दे देते हैं, मुक्ति ददात कर ही चित स्मन भक्ति योगम, मुक्ति दे देते हैं लेकिन प्रेम नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेम के बस में उन्हें होना पड़ता है। इसीलिए जो मुक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं उनको मुक्ति दे देते हैं, जो उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तब अपने को देते हैं, आत्मा को देते हैं। तो भगवान ने इस तरह माँ यशोदा को आत्म समर्पण किया, अपने को दे दिया, चाहे खिलाओ पिलाओ चूमो मारो पीटो सुलाओ जो कुछ भी करो, इसे आत्मा कहा। पूर्ण सच्चिदानंद घन आनंद विग्रह भगवान को पुत्र रूप में पा करके, चाहे उनको छुआ जाए चुमा जाए चाहे खिलाया जाए चाहे डांटा जाए, केवल आनंद के साथ ही तो सारी क्रीड़ा हो रही। इस तरह माँ यशोदा को सबसे बड़ा सुख मिला। और उपलक्षण से नंद महाराज भी हैं, लेकिन नंद महाराज का जो सुख है वो यशोदा के सुख से थोड़ा नीचे है। ये माँ यशोदा को जो सुख मिला वो उनको नहीं मिला। अथवा यहाँ पर दूरी से ही बात करनी चाहिए, अब ब्रजवासियों के तो ये अपने हैं ही, नंद बाबा गोद में लेकर के जाते थे बाहर, कृष्ण को दिखाते थे, और खास करके रासलीला में दिखाते हैं रासधारी लोग कि जब कृष्ण को माँ यशोदा ने उखल में बांध दिया तब नंद बाबा आकर खोले, तब नंद बाबा ने कहा कि तुम हमेशा माँ की गोद में रहते हो, मेरी गोद में नहीं आते थे, देखो तुमको बांध दिया ना, मैं खोल रहा हूँ। तो कहते हैं अब आज से मैं आपका पुत्र कहलाऊंगा, अब यशोदा की गोद में नहीं जाऊंगा। कोई पूछेगा कि कृष्ण तुम किसके बच्चा हो, तो कहूंगा कि मैं नंदलाल हूँ, मैं नंद का लड़का हूँ, यशोदा का नहीं बताऊंगा। और उसके पहले कहते थे कि मुझे कोई पूछेगा कि किसके पुत्र हो, तो कहूंगा कि यशोदा का, यशोदा का पुत्र हूँ, ये हूँ, ऐसे माँ यशोदा से कहा करते थे। नंद बाबा कहे कि तुम बार बार कहते थे कि आपकी गोद में नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, और वो उसी की गोद में रहते हो, तो अब तो बांध दिया ना, कहते अब कान पकड़ता हूँ उसकी गोद में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो तो तुरंत जाना है, क्योंकि वही भोजन है इनका, माँ का स्तन पीना है और सब करना है, जो भी भोजन है वहीं से मिलता है सब। इस तरह की परस्पर बातें होती रहती है। तो नंद बाबा को भी वही सौभाग्य है, ब्रज की गोपियों को या गायों को सखाओं को, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ब्रज से बाहर के लोगों की तुलना कर रहे, भीतर की ना, क्योंकि जो यशोदा का सौभाग्य था वही उपलक्षण से सबका सौभाग्य। वास्तव में सखाओं का सौभाग्य जो कृष्ण के साथ खेलते हैं झूलते हैं कंपटीशन लेते हैं खेल में, समान सुख है, पर इन सब में भी जसोदा का सबसे ऊपर है। जसोदा जैसा सुख ब्रजवासियों ने पाया, यहाँ तक कि ब्रज की गायों ने भी पाया है, भगवान को दूध पिलाया है साल भर, डायरेक्ट दूध पिए हैं बछड़ा बनकर कृष्ण। लेकिन ऐसे तो लगभग बराबर बाहरी दूध पीते ही रहते थे, खाते रहते थे, तो ब्रजवासियों को सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भूमि को, वृक्षों को, जिनके फल को भगवान अपने हाथों से तोड़कर खाते थे, जिनके पुष्प को भगवान अपने हाथों से तोड़कर कहते थे इसकी माला बनाओ और मुझे पहनाओ, तो उन वृक्षों का वही सौभाग्य था वास्तव में। लेकिन ब्रह्मा जी जो इतने बड़े सेवाधिकारी हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, या भगवान शिव या लक्ष्मी जी, ये उस सुख को नहीं पा सकते जो जसोदा ने और ब्रजवासियों ने प्राप्त किया। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम जथा भक्ति मतामिह। अतः सिद्धांत है, यहाँ पर प्रश्न होता है कि किनको भगवान प्राप्त होते हैं और क्या किया जाए कि जसोदा की तरह हमें भी भगवान प्प्राप्त हो। एक सहज अभिलाषा जगती है, उसी का उत्तर देते हुए निगेटिव रूप से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अयम गोपिका सुतः भगवान देहिनाम ज्ञानीनाम आत्मभूतानाम न सुखाप। सुख आप का अर्थ है सुख से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अयम गोपिका सुतः, अयम शब्द का अर्थ है ये। महाराज परीक्षित सभा में बैठे हैं और सब ऋषि मुनि हैं, उस सभा में सुखदेव गोस्वामी का मन इतना अभिनिविष्ट है कृष्ण की लीला में कि मानो उखल बंधन में पड़े हुए भगवान पास में है, और सुखदेव गोस्वामी का चित्त उनके बगल में जाकर कह रहा है ये गोपिका सुत, अयम गोपिका सुत यशोदा नंदन जो उखल में बंधे हुए हैं, ये देहधारियों को सुख से प्राप्त नहीं हो सकते, ज्ञानियों को सुख से प्राप्त नहीं हो सकते, या आत्मभूत लोगों को सुख से प्राप्त नहीं हो सकते। यहाँ देही का अर्थ है देहाभिमानी तपस्वी, देही शब्द का ये अर्थ समझ लेना चाहिए, स्पेशल अर्थ देही नाम। कुछ लोग तप करते हैं, कष्ट सहते हैं, बहुत प्रकार की तपस्या करते हैं, लेकिन देह से मैं बुद्धि उनकी नहीं जाती है, देह का कष्ट सह लेते हैं, उपवास आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देह में मैं बुद्धि बनी रहती है। तो प्रकृति के द्वारा दिए गए कष्ट को सहने में समर्थ होते हैं, लेकिन उनके चित्त में भगवान के प्रति प्रेम की धारा नहीं चलती है, भगवान से कोई खास प्रेम नहीं होती, तपस्या करते हैं, तो उनको यहाँ देही कहा गया है। और ज्ञानी नाम जो देहात्म बुद्धि तो नहीं रखते हैं, आत्मा के स्वभाव को जानते हैं, स्वरूप को जानते हैं, कितना कि आत्मा देह से भिन्न वस्तु है, देह नहीं है, तो वे ज्ञानी लोग यह भी देख लेते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वह भगवान का स्वरूप है, हमारा चिन्मय स्वरूप है, भगवान चिन्मय है, ये सब बातें देखते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम नहीं करते हैं। ज्ञान होता है तो वो उनको भी भगवान प्राप्त सुख से नहीं होते हैं। यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, यह कहा जा रहा है कि भगवान सुख से प्राप्त नहीं होते हैं, उनको और कई कई जन्म लेना पड़ता है, और जन्म ले करके अंततः किसी साधु का संग करना पड़ता है, ये अर्थ है। चैतन्य चरितामृत में इसको बहुत अच्छा तरह से व्यक्त किया गया है, बाद में किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं या किसी तरह से किसी साधु का संग प्राप्त होता है, तब तपस्या का अभिमान दूर होता है, ज्ञान का अभिमान दूर होता है, तब शुद्ध भजन चालू होता है, कई जन्मों में जा करके तब ये भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और ऐसे भगवान के बहुत से स्वरूप हैं, और स्वरूप तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अयम गोपिका सुतः नहीं प्राप्त होते, उखल में बंधे हुए भगवान जल्दी नहीं मिलते इन लोगों को। जथा भक्ति मताम है, जथा भक्ति मताम आत्मभूत ज्ञानियों का विशेषण दिया गया है यहाँ पर, जो भगवान के साथ अपना अभेद देखते हैं, हम देह नहीं है, हम चिन्मय सत्ता है, हम ब्रह्म है, इस तरह से जो वास्तव में जगत के आकर्षण में नहीं है, बहुत ऊंचे विचार वाले हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं, पर वे गोपिका सुत को नहीं प्राप्त कर सकते। और गोपिका सुत की विशेषता, भगवान शब्द दे रहे हैं, भगवान गोपिका सुत या गोपिका सुत भगवान, भगवान का यहाँ अर्थ अनंत लील, अनंत लीला विलासी गोपिका सुत, जो भगवत्ता कहते हैं, माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। तो भगवान शब्द का ही अर्थ है, जो इस तरह ब्रज में अनंत अनंत क्रीड़ा कर रहे हैं, ये गोपिका नंदन गोपिका सुत भक्तिहीन लोगों को नहीं प्राप्त हो सकता। भक्ति मतान जो भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको ये प्राप्त होते हैं। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी व्याख्या तो बहुत समय ले सकती है, सारा शास्त्र ही इससे जुड़ा हुआ है। साध साधन, तो यहाँ पर गोपिका सुत साध्य है, साधन है। अब जैसे आपने तपस्या सुना, तपस्या ज्ञान योग और भक्ति, तो जथा भक्ति मतान इह, इह का अर्थ ब्रज, इस ब्रज में ये गोपिका सुत जैसे भक्ति करने वालों के द्वारा प्राप्त होते हैं, वैसा ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त नहीं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और लोक में भी सभी लोग कहते हैं भक्ति सबसे बढ़ करके है, भक्ति सबसे बढ़ करके, फिर भी ज्ञान मार्ग ही पकड़ लेते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। जब भक्ति ही मुख्य है और भक्ति में भी कलयुग में नाम जप ही, नाम कीर्तन ही सबसे बड़ा है, तो सभी लोग नाम कीर्तन क्यों नहीं करते? फिर भी ध्यान तपस्या कुछ न कुछ तीर्थाटन हिमालय या वह घूमते ही रहते। वास्तव में वो निष्ठा आ जाए कि हम सब कुछ छोड़ करके और भगवान का नाम लें जोर जोर से और उनकी कथा सुने, ब्रजवास करें रहें, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रवचन करना होगा तो कहेंगे भक्ति सबसे बढ़ करके, ये ठीक है बात। वास्तव तो जो कुछ भी और साध्य अनेक हैं, अनेक साधकों को प्राप्त होते हैं अपनी अपनी साधना के अनुसार, परंतु हे महाराज परीक्षित, यदि गोपिका सुत को प्राप्त करना है तो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। यह हम भक्तों को एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में यह लालसा नहीं होती होगी कि हम भी जसोदा की तरह कृष्ण को पा जाते? ये स्वाभाविक लालसा होती है। कैसे पाएंगे? तो भक्ति से पाएंगे। भक्ति करते करते बहुत समय बीतेगा तब जा करके हम पा सकते हैं। तो साधक देह में जो लोग इतना सौभाग्यशाली होते हैं कि भगवान का डायरेक्ट संपर्क प्राप्त करते हैं चिंतन द्वारा या बाहर डीटी वर्शिप श्री विग्रह की आराधना में भी, जिन्हें भगवान के अंग स्पर्श का सौभाग्य मिलता है, और खास करके भाव देह से, सिद्ध देह से, सिद्ध देह तो जब शरीर छूटेगा उस समय प्राप्त होगा, लेकिन अभी से वैसी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति मताम शब्द का अर्थ है कि माँ जशोदा के भाव से या ब्रजवासियों के भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना, मन में उसको मानसी सेवा कहते हैं। तो बाहर भी सेवा साधक शरीर से और मन में भी, तो इस प्रकार की भक्ति में जो अग्रसर पुरुष होते हैं उनको गोपिका सुत प्राप्त होते हैं। यह इस ब्रज में गोपिका नंदन प्राप्त होते हैं, और नहीं तो लक्ष्मीकांत या विराट पुरुष या उनको भी जो वास्तव में भगवान से अपना अभेद देखते हैं, उनको भी निर्विशेष स्वरूप की उपलब्धि होती है, वो भी धन्य हो जाते हैं या भगवान के धाम में परिकर बन करके जाते हैं। लेकिन अयम गोपिका सुत, यह गोपिका नंदन, तो भक्ति से प्राप्त होते और वह भक्ति ब्रजवासियों के भाव के अनुसार, क्योंकि गोपिका सुत है तो गोपिका सुत प्राप्त होंगे अपने को गोपी या गोप समझने से। गोपिका सुत यहाँ सूतः शब्द भी बहुत विशेष महत्व का है, सुखदेव गोस्वामी का स्वतंत्र वाक्य है। वास्तव में गोपी ने इनको इनका प्रसव किया है, इनको जन्म दिया, ये सिद्धांत ध्वनित हो रहा है। गोपी के पुत्र हैं, माँ देवकी के तो पुत्र हैं ही, लेकिन सेम समय वे यशोदा के भी पुत्र हैं, वे भक्ति से प्राप्त होते हैं। इतना कहकर अब सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्राया मातरी प्रभु अद्राक्षी अर्जुन पूर्वम गुह्य कौ धनदात्मज। मातरी गृह कृत्येषु व्यग्राया, माँ कृष्ण को तो बांध दी, लेकिन और केवल इनको बांध करके और अगोरे रखना ये काम नहीं था उसका, कि देखते रहे, उनके लिए और बहुत बहुत काम था माता के जी में, तो वो लगी काम में व्यग्र हो गई। व्यग्र मतलब ये काम करना वो काम करना, क्योंकि भागने में बांधने में बहुत समय बीत गया, रोज का रूटीन था, उसके अनुसार कृष्ण की सेवा करनी थी, ये करना था वो करना था, फेस्टिवल भी था इंद्र जाग, उसके लिए भी डायरेक्शन देना था, ये करना वो करना, एक लड़के के पीछे बहुत परेशान हो गई, तो बांध करके इसके बाद घर के काम में व्यग्र हो। तो भगवान ने सोचा कि माँ का कार्य है जो वो कर रही है, अब मेरा काम जो है मुझे करना चाहिए। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं टीका में कि बंधे हुए भगवान अन्य के मोचक बन रहे हैं, दूसरों का उद्धार करने वाले। जब तक खुले थे खेलते थे तब तक वृक्षों के उद्धार की बात इनके मन में नहीं आई थी, जब आज बंध गए, हरीश्वर जी कहते हैं जब भगवान बंध गए तब इनमें दया आई कि हमारी तरह ये भी बेचारे बंधे हुए, जो अपना दुख देखे तब उनके दुख का उनको स्मरण आया। नहीं तो उनमें वो लुका छिपी खेलते थे बच्चों से इधर उधर भागने का, रोज सटते थे, आलिंगन करते थे, रहते थे छाया में, ये कभी उद्धार की सोचे नहीं। लेकिन जब इन पर विपत्ति पड़ी तब देखे कि बेचारे ये भी वृक्ष जोनी में है, इनका उद्धार करना चाहिए, विचार आया। बंधने पर विचार आया। ठीक कहा है कि जब व्यक्ति को दुख मिलता है तब वो दूसरे के दुख को समझता है, ऐसा विनोद में टीका करते हैं। तो भगवान अद्राक्षित, अद्राक्षित का अर्थ देखे, क्या पहले वृक्षों को नहीं देखे थे, यहाँ देखने का अर्थ विचार करने लगे। कहता है आदमी कि आप जरा दया दृष्टि से हम पर देखिएगा, देखने का अर्थ है कि वहां से पत्र भी लिख दिए वो भी देखना है, फोन कर दिए वो भी देखना है, देखने का अर्थ नहीं केवल त्राटक लगा करके देख देना है। तो भगवान ने देखा इसका अर्थ विचार किया दोनों वृक्षों को, अद्राक्षित अर्जुनऊ, अर्जुनऊ दो वृक्षों को देखा, लेकिन और क्या क्या देखने लगे, पूर्वम गुह्य कौ, ये पहले यक्ष रहे हैं। तो भगवान ने विचार किया कि पूरा नारद सापेन वृक्ष काम प्रापित मदात, अच्छे गर्भ के कारण ये दोनों वृक्ष जोनी में डाल दिए गए नारद जी के द्वारा, तो भगवान उन पर कृपा किए, उनका उद्धार किए। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि कैसे नारद जी साप दिए उनको, ऐसा कौन सा गलत काम लोग कर दिए कि नारद जी जैसे संत को भी क्रोध आ गया। इस प्रश्न का उत्तर कल आएगा, अब यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय दश प्रारंभ। राजोवाच कथ्यतां भगवन्येतत् तयोः शापस्य कारणं यत्तद् विगर्हितं कर्म येन वा देव ऋषेस्तमः। ट्रांसलेशन। किंग परीक्षित इंक्वायर्ड फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, ओ ग्रेट एंड पावरफुल सेन, what was the cause of Nalkuvars and Manigrivas having been cursed by Narad Muni? What did they do that was so abominable that even Narad, the great sage, became angry at them? Kindly describe this to me. कल कथा का उपसंहार हुआ था कि माँ यशोदा कृष्ण को उखल में बांधकर अपने गृह कृत्येषु व्यग्राय अपने गृह के कृत्यों में व्यग्र हो गई। गृह कृत्येषु बहुवचन में है तो इसे सिद्ध हो रहा है कि माँ यशोदा को भी कोई अवकाश नहीं मिल रहा था कि अपने पुत्र की हालत देखे। बहुत समय लग गया उसको। गृह कृत्येषु बहुवचन शब्द का प्रयोग, बहुत बहुत घर के काम थे उसमें वो लग गई। तब भगवान उखल में बंधे बंधे जमलार्जुन वृक्षों पर विचार किए, ये पहले कुबेर जी के आत्मज रहे हैं देवयोनि में और अब नारद मुनि के शाप से वृक्षता को प्राप्त हुए, वृक्ष बन गए। पूरा नारद शापेन वृक्षतम प्राप्त उमदात। क्यों शाप मिल गया तो उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मदात अतिशय अभिमान में थे, संसारी के धन संपत्ति आदि के मद में थे तो इस कारण से नारद जी ने श्राप दे दिया। उनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव, ख्यात हैं ये दोनों, ख्यात श्रियान्वित और परम धन से युक्त हैं। जब धनद के पुत्र हैं तो फिर इनके पास अब धन की क्या कमी रहेगी। जिनका पिता दूसरों को धन देता है तो धनद कहते हैं, कुबेर जी का एक नाम ही है धनद। संसार में खासकर स्वर्ग में जब जब बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है तब कुबेर जी देते हैं। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में भी। और उनके दोनों पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रीव, और वे कितना खर्च करते थे, किस शान के साथ रहते थे, इसका क्या वर्णन किया जाए। थोड़ा सा वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, नारद जी को क्यों क्रोध आ गया, नलकुबर और मणिग्रीव ने क्या अपराध किया था। विगर्हितम कर्म, निंदित कर्म। विगर्हा का अर्थ होता है निंदा, और विगर्हितम निंदितम, क्या श्राप का कारण था। कारण तो अवश्य ही होगा क्योंकि नारद जी बेकारण तो श्राप दे नहीं सकते, तो क्या श्राप का कारण था। उन दोनों ने कौन निंदित कर्म किया था जिसके कारण नारद जी तक को तमह आ गया। यह क्रोध है, रजोगुण और तमोगुण का कार्य है। क्रोध आना किसी मनुष्य की बहुत हीन स्थिति का सूचक। जो लोग गुणों को पार कर जाते हैं, प्रकृति के गुणों को, सत्व रज तम आदि को, तो वे क्रोध नहीं करते हैं। जैसे नारद जी गुणातीत हैं, परंतु कौन ऐसा गलत काम इन लोगों ने कर दिया कि गुणातीत महाभागवत सबके आचार्य नारद जी में भी क्रोध आ गया। कौन ऐसा कार्य कर दिया। वास्तव में क्रोध नहीं आया था नारद जी को, मतलब अनुग्रह करके साप दे दिए थे, लेकिन साप शब्द ही सुन करके ऐसा सोचा जा सकता है कि साप तो क्रोध में दिया जाता है, और जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो वरदान देता है, वर देता है, क्रोध में होता है तो साप देता है। तो कौन सा विगर्हित कर्म किए? भक्ति रसायनम में श्री हरिश्वर जी लिखते हैं कि महाराज परीक्षित को भी स्वयं साप मिला हुआ है, इसलिए जहां साप की बात आती है तो ये बहुत केयरफुली पूछते हैं। कई बार ऐसे भागवत में देखा गया है, जहां साप की बात आई तो पूछते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं कि इनको साप है 7 दिन में मर जाने का। तो मन में ये हो रहा है कि हमने भी गलती किया था तो हमें मृत्यु दंड मिला, लेकिन नलकूबर और मणिग्रीव ने क्या कर्म किया था कि देवर्षि इतने कृपा किए, उन पर वृक्ष जोनि में डाल दिए, वो भी ब्रज में। कुछ और तरह से प्रश्न कर रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं नलकूबर और मणिग्रीव से। तो वे अफसोस करते हुए कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण के कोप से मरने जा रहा हूं और श्री नारद जी की कौन ऐसी दाहिनी दृष्टि पड़ गई नलकूबर और मणिग्रीव पर कि वे भगवान की लीला में सहायक वृक्ष बने भगवान के धाम में, उनका बड़ा सौभाग्य था। तो सुनने की उत्कंठा हुई, उन्होंने क्या गलती किया था। बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है, और पहले के ब्राह्मण या ऋषि मुनि साप देने में समर्थ होते थे, वो हाथ में कोई अस्त्र लेकर नहीं चलते थे, बस बात कह देते थे और वो पूरा हो जाता था। इसीलिए ब्राह्मणों को कहा जाता था कि ये लोग जीभ पर वाग वज्र लेकर चलते हैं, वाक ही वज्र का काम करता था। बड़े बड़े योद्धा राजा सम्राट ब्राह्मणों से डरते थे, कोई गलत कार्य नहीं कर सकते थे, इस तरह समाज को ब्राह्मण कंट्रोल में रखते थे। तो क्या था सापस्य कारणम? महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी अब उत्तर दे रहे हैं। सुनिए, इनके अपराध की अतिशयता का वर्णन कर रहे हैं, कितना एक्सट्रीम अपराध किए थे, गलती किए थे लोग। श्री शुक उवाच, रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्या मदोत्कटौ वारुणी मदिरां पीत्वा मदाघूर्णित लोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने। ध्यान से सुनना चाहिए। एक तो देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर जी के पुत्र थे देव योनि में, और काम कितना अपने स्वभाव स्वरूप के विरुद्ध कर रहे थे। एक तो धनद के पुत्र थे, और दूसरा इनके अभिमान का कारण हो गया रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा, ये भगवान शिव के सेक्रेटरी बन गए रुद्र के। रुद्र का अर्थ होता है रूत, रोगाणी द्रावयति इति रुद्र, जो रोगों को भगा दे, समाप्त कर दे, उसको रुद्र कहते हैं। पर रुद्र के पास रहने के बावजूद भी इनका संसार रोक गया नहीं, और बढ़ गया। बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र थे और दास बन गए ईश्वर के ही, भगवान के ही, रुद्र के अनुचर बन गए। रुद्र के अनुचर बन गए तो इनको चाहिए था कि रुद्र के चरण चिन्ह पर चलें, भगवान शिव की इच्छाओं का पालन करें, उसके अनुसार रहें। अनुचर बन गए, यह इनका सौभाग्य था कि भगवान शिव की सेवा इनको मिली। परंतु इतने धनी थे कि भगवान शिव का अनुचर बनने के बाद भी इनमें कोई त्याग या तपस्या आदि का भाव नहीं आया। रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा, रुद्र के अनुचर होकर भी सुदृप्त अतिशय घमंड में हो गए। सुदृप्त, दृप्त का अर्थ गर्वित, सुदृप्त अतिशय गर्व में हो गए। बड़े का पुत्र हैं और दूसरे संसार में सबसे बड़े ईश्वर के वे लोग दास हो गए, अब कौन बोलने वाला है इनके सामने। और पैसे की कोई कमी नहीं थी, परम सुंदर शरीर था, इधर शिव जी का बरद हस्त उनके मस्तक पर था। इनको चाहिए था कि जब कैलाश में रह रहे थे भगवान शिव के धाम में, तो वह कैलाश धाम तो भगवत भक्ति का स्थान है, वहाँ तो भगवान की आराधना की जाती है, स्वयं भगवान रुद्र भी भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। जब देखिए तब वे कथा में लगे रहते हैं, श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा मिलता है संकेत। तो उस कैलाश में लोग क्या गलती कर रहे थे, सुदृप्त धनदात्म जल, तो इनके सुदृप्तत्व का, इनके अभिमान का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, तो दो कारण देते हैं, रुद्रस्य अनुचर और धनद के आत्मज। स्थान कहाँ था, कैलाशोप बने रम्य मंदा किन्य मधुकटल। एक बार की बात है, एकदा तो नहीं लगा रहे हैं, प्रायः इनकी यही आदत थी, कैलाश के उपवन में बगीचे में ये लोग स्त्रियों के साथ घूम रहे थे, गा रहे थे, और उस पवित्र धाम में बारुणी मदिरा पीत्वा शराब पी रहे थे। और जगह आदमी पाप करता है तो सोचता है गंगा जी में या भगवान के धाम में चलेंगे, वास करेंगे, हमारा अपराध कट जाएगा, पाप कट जाएगा। अन्य देश से कृतम पापम पूर्ण क्षेत्र विनश्यति, ऐसा है ना, तीर्थ क्षेत्र, अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेप भविष्यति। अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ में कटता है, केवल वास करने से, भगवान का भजन करने से, स्नान करने से तीर्थ में पाप कटते हैं वास्तव, और जान और अनजान में पाप सबसे होते ही रहते हैं, पाप बहुत होते रहते हैं तो कट जाते हैं, लेकिन जिस स्थान पर पाप कटना चाहिए उसी स्थान में आकर के पाप कर रहे थे और पूरी शक्ति के साथ कर रहे थे। इनके पास धन था, सब कुछ था, पावर था, इसलिए कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि रुद्र जी का हाथ था इनके ऊपर। रुद्र का एक और भी अर्थ होता है जो सारे जगत को रुला देते हैं, ध्वंस कर देते हैं। जब जन्म हुआ तो रो भी रहे थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम रुद्र रखा। तो बहुत बड़ा पोजीशन है भगवान शिव का, तो वे कुछ नहीं कह रहे थे, इसीलिए कोई दूसरा आदमी डर करके कुछ नहीं कहता था, भाई अब वे बोलते ही नहीं है तो हम क्या करें। ऋषि मुनि जाते थे कैलाश में, सत्संग करते थे शिव जी का, और वे सब यह भी जानते थे कि ये दोनों कितने उपद्रव कर रहे हैं। कैलाश के उपवन में, उपवन का अर्थ है जो प्लांटेशन किया गया था, भगवान शिव ने बहुत सुंदर ढंग से वहां प्लांटेशन कराया था, वो सुंदर सुंदर वृक्ष। तो उस उपवन में ये गए, और कहां, जहां मंदाकिनी बह रही थी, गंगा जी उसके तट पर, गंगा जी के तट पर मदोत्कट, बहुत उत्कट अभिमान में थे, और गए और बारुणी मदिरा पिए। इस संसार में मदिरा तो बहुत प्रकार के है, लेकिन सबसे अधिक नशा उत्पन्न करने वाली मदिरा जो है उसे वारुणी मदिरा कहते हैं। समुद्र मंथन से यह मदिरा उत्पन्न हुई थी, और उसके देखा देखी उसके क्वालिटी का फिर बाद में भी बनाते होंगे, अथवा वरुण देव के द्वारा प्रस्तुत की गई मदिरा, वारुणी मदिरा पी लिए। पूरे विश्व में, स्वर्ग में भी मदिरा पाई जाती है, ये संसार ऐसा है कि कैलाश में मदिरा लेकर पहुंच गए हैं। पाप करने वाले वास्तव में धाम में भी पाप करते हैं, और बाहर सिगरेट पीते हैं तो आकर धाम में भी पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, चाहे कुछ न कुछ गलत काम। तो कैलाश के उपवन में गंगा जी के तट पर ये लोग गए और उपवन में घूम रहे थे, वारुणी मदिरा पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो, इतना अधिक पी लिए, इतना अधिक पी लिए कि अब मद में इनकी आंखें घूमने लगी, विवेक समाप्त हो गया। और स्त्री जनई रनुगायत भी, और इनके सहयोगी कौन थे? कोई साधु समाज या भला आदमी इनके साथ नहीं थे। इनके जन कौन थे? तो स्त्री, स्त्री जनई, स्त्री भी कहा जा सकता था, लेकिन स्त्री जनई का अर्थ है कि स्त्रियां ही जिनका जन थी, एसोसिएट्स थी, उन स्त्रियों के साथ चेरतु पुष्पिते बने, उस पुष्पित वन में घूम रहे हैं। देखो स्त्रियों, और स्त्रियां कैसी थी? अनुगायत भी, ये दोनों गा रहे थे तो इनके गीत के अनुसार वो भी गा रही थी, ये उनके सौंदर्य का गीत गा रहे थे, वे लोग इनके सौंदर्य का गीत गा रहे थे, यही तो संसार है। को अनुगायत भी, अनु का अर्थ है इनके बाद, अथवा अनु का अर्थ है निरंतर, निरंतर स्त्रियां गा रही थी और उनके साथ ये सब घूम रहे थे। इसे ये समझना चाहिए केवल यही मदिरा नहीं पिए थे, उन स्त्रियों को भी पिलाए थे, और स्वर्ग की देवियां हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे कुसंग में पड़ गई थी वो, लेकिन उन लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं पिया था इसलिए कुछ होश में थी, तो गान कर रहे थे, घूम रहे थे, पुष्पिते बने, और भी इनके मादकता को बढ़ाने वाला दृश्य था, पुष्पित बने, सब जगह वो वन पुष्पित था, पुष्प और सुगंधित हवा, एकांत स्थान था, यद्यपि भगवान का धाम है कैलाश, वहां पर भजन का ही परमाणु है वास्तव में, भगवान शिव के पास ऐसा कोई चाकचिक्य नहीं है कैलाश में, वो स्वयं ही घर नहीं बनाए हैं, वो वृक्ष के नीचे रहते हैं, वट वृक्ष के नीचे रहते हैं कैलाश में, इसलिए वहां ये कोई नहीं है कि यह कंपाउंड और ये हाता बनाकर एक बंगला बना दो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं, बहुत सुंदर वातावरण वहां का है, आज भी है, पर उस धाम में जाकर के ये दुष्ट लोग इस तरह पाप कर रहे थे, स्त्री में आसक्त थे, मदिरा पी रहे थे, गा रहे थे, कर रहे थे, तो एक तो गलती कर रहे थे कि अपने पिता का नाम बदनाम कर रहे थे धनत जी का, दूसरे अपने स्वामी पर भी कलंक लगाए भगवान शिव पर कि उनका दास होकर के गलत काम कर, तीसरा कैलाश जैसे शुद्ध धाम में लोग पाप कर रहे थे, और चौथा गंगा जी के किनारे, जो गंगा जी समस्त पापों को धोती हैं, काटती हैं, उन्हीं गंगा जी में आकर के लोग पाप कर रहे थे। अच्छा, पाप करने में सहकारिणी सहयोगिनी स्त्रियां थी, उनके साथ गाना बजाना नाचना, धाम में भगवान के भक्तों के साथ रहना चाहिए और भक्ति में हमेशा वातावरण रहना चाहिए, मन विचार सब सब कुछ भक्ति में, धाम में आकर के स्त्रियों के फेर में नहीं रहना चाहिए, यह शिक्षा है इस स्थान पर, भगवान के भजन में रहे, लेकिन इस तरह से नलकुबर और मणिग्रीव गलती कर रहे थे। स्त्री जनहिर अनुगायत भी चेरतु पुष्पिते बने, स्त्रियों के साथ गाते हुए घूम रहे थे। इसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके और हाव भाव का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब समझ सकते हैं कि स्त्रियां केवल गाती ही नहीं थी, उनके साथ आलिंगन चुंबन आदि इनका चल रहा था, उच्छृंखल सुदृप्त पहले कह ही दिया गया है, इस तरह से घूम रहे थे। वन में घूमते घूमते अब जल विहार की इच्छा हुई उन स्त्रियों के साथ ही, तो पहले से ये कोई योजना बना करके प्लान करके नहीं गए थे कि स्नान करना है, अतः वस्त्र तो था नहीं इनके पास दूसरा स्पेयर, बस तब ये हुआ कि तब जल विहार हो जाए। अरे इन्होंने अपने अपने वस्त्र उतारे तट पर और गंगा जी में प्रवेश कर गए। अम्भोज बन राजनी, गंगा जी इतनी शुद्ध वहां है, इतनी केवल कमल ही गह गह खिले जल में, बहुत सुंदर जल, और उसमें वस्त्र खोल कर रख करके चले गए। अथवा एक टीकाकार कहते हैं कि नहाने में ही वस्त्र खुलकर कहां चला गया इनको पता नहीं, जो भी हो वस्त्र उतारने का वर्णन नहीं, अब आवेश आ गया, वन विहार हुआ, वन विहार के बाद जल विहार। जल विहार में एक दूसरे पर जल उछालना, डूब करके छूना और इस तरह से कंपटीशन लेना, जल क्रीड़ा है। जो व्यक्ति दूषित अंतःकरण वाला है वो जल में रहे चाहे आकाश में रहे चाहे पृथ्वी पर रहे, उसकी प्रवृत्ति सेम होती है, वो पाप में ही रत रहता है। नहीं नहीं उनको वहां रुकिए, मता नहीं दीजिए। इस तरह नलकुवर और मणिग्रीव जल विहार करने लगे। अंतः प्रविश गंगायाम, पहले तो गंगा जी के तट पर वन में घूमते थे, लेकिन उसके बाद अंतः प्रविश, ओहो उस महान पवित्र नदी में, तीर्थ में ये लोग खेलने लगे। चिक्रीडतु, किनके साथ? ज्योति भी, ज्योति स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। गजा विव करेण भी, जैसे दो गजराज हथिनियों के साथ क्रीड़ा करें जल में, वैसे क्रीड़ा करने लगे। उच्छृंखल विहार कर रहे हैं आलिंगन आदि, इसलिए उपमा दे रहे हैं गजव युवक करेणु भी। करेणु कहते हैं हथिनियों को, जैसे बहुत सी हथिनियों के साथ दो गजराज विहार करें, इस तरह से विहार करने लगे। इनकी महान स्थिति को बता करके तो सुखदेव गोस्वामी इनके अपराधों को बता रहे हैं। ये सब इनकी महानता बताना ही अपराध है, मतलब इनके अपराध को सूचित करता है। और फिर कैलाश में, गंगा जी में इस तरह से उच्छृंखल वासना में व्यवहार करना, गाना, जल विहार करना, यह अति अपराध को सूचित कर रहा है। इस तरह से लगे हुए थे। श्रीलहरी सूर्य जी कहते हैं कि जो काम जहाँ करना होता है और जहाँ शोभा देता है, उस काम को वही करना चाहिए। कैलाश या गंगा जी इस कार्य के लिए नहीं है, स्त्री पुरुष के विहार के लिए वह नहीं है। अनादिकाल से ऋषियों ने गंगा जी में स्नान किया है, भजन किया है तट पर। कैलाश में भगवान शिव स्वयं ही भजन में लगे रहते हैं, लेकिन वैसे स्थान पर जाकर शराब पीना, स्त्री में आसक्त रहना और स्त्री का गीत गाना, आलिंगन आदि करना, यह वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। इस तरह से लोग कर रहे थे, कोई हिचक नहीं थी। तो आज के युग में भी तो आदमी कोई अगर घूमेगा तो कम से कम डरेगा कि कोई देख लेगा, लेकिन उन लोगों को तो कोई भय नहीं था। मदिरा भी इतना पी लिए थे कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। जद्रिच्छया च देवर्षि भगवान तत्र कौरव अपश्यत नारदो देव श्री बाण संबुद्ध्यत। जद्रिच्छया अकस्मात देवर्षि भगवान नारद वहां पहुंच गए। कहीं से आ रहे थे कि अकस्मात वहीं प्रकट हुए। अब जो भी हो, वैसे वे कैलाश में तो आते ही रहते हैं, भगवान शिव के मुख कमल से वे कथा सुनते रहते हैं। प्रायः देवर्षि नारद जी भगवान शिव का सत्संग करते हैं, तो आते ही रहते हैं। लेकिन उस दिन अब जद्रिच्छया नलकुवर और मणि ग्रीव के सौभाग्य का दिन था कि देवर्षि नारद उस पथ से आ गए। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि यह उनका कोई बहुत बड़ा भाग्य था। नलकुवर और मणिग्रीव का जद्रिच्छा का यहाँ अर्थ ये, जद्रिच्छा किसी न किसी जन्म का सुकृत रहा होगा, चाहे जैसे भी उनका भाग्योदय हुआ कि देवर्षि नारद जी वहाँ उस वहाँ अपियर्ड हुए, वहाँ आ गए। तो देवर्षि नारद जी के लिए यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग किया गया और देवर्षि, तो देवर्षि का अर्थ सनातन गोस्वामी पाद जी अर्थ करते हैं नियमन पावर है इनमें, कंट्रोलिंग पावर, साप देने की शक्ति। ऐसा नहीं है कि साधु महात्मा है और चुपचाप बस देख करके चले जाए। नलकुबर आदि को भी कंट्रोल करने की शक्ति उनमें थी, देवर्षि शब्द है। और भगवान शब्द दयालुत्व को व्यक्त कर रहे हैं, दयालु। सात दिए दया किए, इसके लिए भगवान और देवर्षि सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। भगवान देवर्षि नारद, कितना सुंदर भाव से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, पूर्व के आचार्यों का कैसा आदर करना चाहिए। कथा कहते समय श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान देवर्षि नारद कह रहे हैं, जबकि देवर्षि नारद जी वहां उपस्थित हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं और इस तरह से वे बोल रहे हैं सबके सामने। अपश्य उनको देखे, श्री नारद जी की करुणा भरी दृष्टि दोनों भाइयों पर पड़ी, देख और छिबाणव समबुद्ध्यत, छिबाणव का अर्थ मदिरा मत, वो समझ गए, समबुद्ध्यत वो समझ गए कि ये मदिरा पीकर उन्मत्त। क्यों समझ गए? इनकी स्थिति को देख करके वे समझ गए। और आगे वर्णन आता है कि नारद जी को देखते ही स्त्रियां लज्जित हो गई और सांप की शंका से तत्काल ही निकल कर अपना अपना वस्त्र पहनने, वस्त्र को वे उचित ढंग से नहीं पहने लेकिन किसी तरह से लपेट करके झुरमुट में होकर के इधर उधर और अपने लाज की रक्षा की। भय था और लज्जा थी स्त्रियों में, भय था, वो लोग सुनी थी कि साधु सांप दे देते हैं भस्म हो जाना पड़ता है, जैसे गौतम जी ने अपनी पत्नी अहिल्या को सांप दे दिया था वो पत्थर हो गई थी, ये सब इतिहास लोग जानती थी। और यह भी उनको मालूम था कि नग्न स्नान एक अपराध है, एक सोशल अपराध भी है, ऐसे शास्त्र का अपराध तो है ही, जल देवता का अपराध होता है, वायु देवता का अपराध होता है, भगवान की आज्ञा की अवहेलना होती है, और समाज भी अपराधी मानेगा, कोई नग्न घूमे तो उसको पुलिस पकड़ करके थाना में बंद कर सकती, ऐसे कैसे घूम रहा है। कुछ लोग तो ऐसे पंथ चला दिए हैं, नग्न घूमते हैं तो उनको केयर नहीं करते हैं, तो पशु की तरह घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसे युवक युवती जहां तहां अगर घूमने लगे तो बैन लगाया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं घूम सकते, बंद कर दिया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। स्त्रियों को इस बात का पता था कि हम लोग गलत कर रही हैं, एक तो स्थान ऐसा है कि वहां ये नहीं करना चाहिए और दूसरे इस तरह से नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, तो ये लोग तुरंत निकल आई। तम दृष्टवा व्रीडिता देव्य, आखिर देवियां थी स्वर्ग की स्त्रियां, तो व्रीडिता लज्जिता हो गई और विवस्त्रा होने के कारण साप संकिता, विवस्त्रा से दोनों हैं, विवस्त्र थी बिना वस्त्र के थी इसलिए ब्रीडिता, ब्रीड़ा हुई लज्जा हुई, और बिना वस्त्र के थी तो साप संकिता, शंका का अर्थ भय होता है संस्कृत में, साप से भयभीत हो गई। वासांसी पर यधु शीघ्रम, नारद जी को उन लोगों ने देखा और पहचाना त्यों ही निकल करके झटपट अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन विवस्त्र नहीं वह गुह्यक हो, गुह्यक यक्ष उनको गुह्यक कहते हैं, ये दोनों गुह्यक नहीं ही पर नहीं ही पहने, एवं शब्द का अर्थ है कि उन स्त्रियों ने भी संकेत किया पहनो पहनो जल्दी पहनो पहनो, लेकिन नहीं वह पर यद नहीं ही पहने वे नहीं पाने, एवं शब्द पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते, चाहिए था कि अपने से पहन ले लेकिन कोई बात नहीं, अपने से नहीं बुद्धि आई तो स्त्रियां बार बार कह रही थी पहनो पहनो पहनो, नहीं तो पता नहीं नारद जी क्या करेंगे। नारद जी विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मांड प्रसिद्ध एक महात्मा है, जब साधारण ब्राह्मण का कहा वो वचन सत्य हो जाता है तो ये कुछ साप दे देंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा, बहुत कहा सब ओर से कहा उन लोगों ने, लेकिन ये तो मदिरा मत थे, ये लोग वस्त्र नहीं पहने, बल्कि मन में इतना तक दुर्विचार आया कि अभी साधु स्नान भी नहीं करने दे रहे, इधर आने की उसको जरूरत क्या, तुम लोग पहनो, हम लोग नहीं पहने, देखते हैं क्या करता है। यही रास्ता था आने का, इसका लोग स्नान भी नहीं करने दे रहे, बताइए। इस तरह की भावना हुई उन लोगों की।